Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
उस अधिष्ठान वस्तु को आधेय वस्तु में, आधार में और आधेय में दोनों भी देख, अधिष्ठान स्वरूप ही देखना चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान ही होता है। इसलिए आधार अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकता है और आधेय आधार से भिन्न नहीं हो सकता है, और ये दोनों भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकते हैं। क्या दोनों भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकते हैं? देखो, आप मंदिर में जाते हैं ना, वहां मूर्ति को देखते हैं। वास्तविक आप मूर्ति को देखते हो कि पत्थर को देखते हो? आप देखते तो पत्थर को ही है, परंतु मानते हैं भगवान, भगवान को। परंतु जानते हो कि भगवान को? जानते नहीं। अच्छा, क्यों मानते हैं? उसमें भगवान है कि नहीं है? अरे तो आपको वेदांति की बात नहीं मैं कर रहा हूं, सामान्य लोगों की। आप मानते इसलिए हैं कि उसमें है तभी तो मानते, नहीं होता तो मानते क्या? नहीं होता तो मानते नहीं है, अब देखते भी नहीं है। क्या जो इस प्रकार से नहीं जानता है वो उसको भगवान मानता है क्या? भगवान भी नहीं मानता है। और भगवान देखता है क्या? भगवान देखता भी नहीं। परंतु जो जानता है वही मानता है, और जो मानता है वही देखता है। समझे ना? इसलिए हम उस पत्थर को भी भगवान देखते हैं। जब पत्थर को भी जब भगवान बना सकते हैं, पत्थर जड़ है कि नहीं है, उसमें भी भगवान को हम देखते हैं। क्यों? जानते हैं इसलिए। उसमें भी भगवान को मानते हैं। क्यों मानते हैं? जानते हैं इसलिए। और जो जानते नहीं है, क्या वो उसमें भगवान मान सकते हैं? उसमें भगवान देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो देखने में भी मानना ज्ञान है, और मानने में भी ज्ञान है। तो ज्ञान की व्याप्ति आई का नहीं आई? ज्ञान की व्याप्ति आई है। बिना ज्ञान का तुम मान नहीं सकते हो, बिना ज्ञान का तुम देख नहीं सकते हो। जब देख नहीं सकते हो तो कर कैसा सकते हैं, बोल कैसा सकते हैं? बिना ज्ञान का तुम कुछ करते हो नहीं, इसका मतलब तुम्हारा कर्म भी ज्ञान रूप ही है कि नहीं है? वो पत्थर भी ईश्वर रूप है कि नहीं है? वो उस पत्थर को ईश्वर किसने बनाया है? ज्ञान ने बनाया, तुम्हारे जानने पन्ने बनाया। ध्यान रखो, क्या बनाया? तुम्हारे जानने पन्ने बनाया है। यहां श्रुति कहति ईशावास्यमिदम सर्वम का मतलब क्या होता है? आप ये जगत को ईश्वर का मानते हो कि नहीं मानते हो? जब अपनी मजबूरी हो, पहला तो कहते हैं ये मेरा है ना? क्या अस्पताल में जाते हैं, दवाइयों से कोई लाभ नहीं होता है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई उस ईश्वर की दुआ, ईश्वर की प्रार्थना करो, उसकी दुआ मांगो, उस समय तुम क्या मानते हो? मेरा पुत्र मानते हो? क्या मानते हो? डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो तुम्हारा मेरापन उसके अंदर का गया उस समय, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना कर रहे, इसका अर्थ ही है कि तुम उसको ईश्वर का मान रहे हैं। परंतु हम जानते नहीं हैं, इसलिए वो मानना हमें ज्ञात नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि यहां श्रुति यही कह रही है कि इस जगत को ईश्वर का मानो, पहले जगत को ईश्वर का मानना चाहिए, पहले ईश्वर को जानना चाहिए, फिर ईश्वर का मानना चाहिए, फिर ईश्वर को देखना चाहिए। क्या? देखने का आधार मानना होता है और मानने का अधिष्ठान जानना होता है, अर्थात ज्ञान, समझेंगे? तो ये श्रुति इस प्रथम पूर्वार्ध से ज्ञान का विधान कर रही है, समझ रहे ना? और ज्ञान के विधान के साथ साथ जगत का भी विधान कर रही है। परंतु जगत को हो देखो, परंतु जानो क्या? देखो मूर्ति को ही, परंतु आप जानते हैं परमात्मा ईश्वर, इसलिए तो तुम हाथ जोड़ते हो, नहीं तो पत्थर को कोई हाथ जोड़ेगा क्या? जब तुम जड़ पत्थर में ईश्वर को तुम जान सकते हो, मान सकते हो, तो चेतन शरीरों में ईश्वर को, ब्रह्म को क्यों नहीं जान सकते हैं? तो ये श्रुति इसके द्वारा तुम्हें आदेश भी दे रही है और निर्देश भी दे रही है, इसलिए विधान करती है। विधिवाक्य ये दो है, एक निर्देशात्मक और एक आदेशात्मक, ये दो वाक्य दो होते हैं, ये विध्यर्थक होते हैं, विधि करने वाले होते हैं। और एक निषेधात्मक वाक्य होता है, ये पूर्वार्ध में ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये श्रुति आपको अधिष्ठान के रूप से कह रही है। क्या कह रहे? अधिष्ठान अर्थात ज्ञान ही इसका अधिष्ठान है, समझना? ज्ञान से ही जगत निकला हुआ है, ध्यानो ध्यान रखो। ये जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? ज्ञान से ही हुई है। अर्थात देखो, अब ज्ञान से जो उत्पत्ति हुई वो क्या अज्ञान रूप हो जाएगी? क्या होगी? क्या नहीं होगी? हमने एक बार पेपर में या कहीं टीवी में कई बात सुनी थी, अमेरिका में या किसी देश में, मैं भूल गया, एक औरत को बच्चा हुआ। क्या हुआ? और बच्चा हुआ, और उस बच्चे का रूप क्या था? घोड़े का था। किसका? घोड़े का। हाथ के जगह वैसे ही, जैसे पीछे के दो पैर थे वैसे ही आगे के दोनों हाथ भी वैसे ही थे, और मुंह भी ऐसा ही घोड़े के जैसा ही था। अब ये आप नहीं है ऐसा भी नहीं कर सकते, और ऐसा ही है ऐसा भी नहीं कर सकते, परंतु है। दिखता है। अब उसको घोड़ा भी नहीं कर सकते हैं और उसको आदमी भी नहीं कर सकते हैं, क्या कहोगे उसको? ऐसी घटनाएं होती है कि नहीं? बहुत घटनाएं होती है संसार में। इसलिए तो भगवत पाद शंकराचार्य विचित्रोयम संसार कहा है कि ये विचित्र है, विचित्र समझ लेना। परंतु ये अपवाद होता है, समझ लेना। तो इसी प्रकार से वास्तविक ये ज्ञान ही है, ब्रह्म ही है, परंतु क्योंकि श्रुति भी कहती है अमृतस्य पुत्रावयम, जीव अमृत का पुत्र है। अमृत का पुत्र का मतलब अमर ही है ना? अमृत का पुत्र क्या मृत होगा क्या? परंतु हो रहा है क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखते हो कि नहीं देखते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम अपने को मरने वाला मानते हो कि नहीं? महाराज जी एक दिन तो जाना ही है, सबको ही जाना है एक दिन। शरीर को मानते हो? शरीर मरेगा मानते हो क्या? मैं मरूंगा मानते हो? सही मानते हो शरीर मरेगा? फिर तुम डरते क्यों है? फिर डॉक्टरों के पास क्यों जाते हो? किसको बचाना चाहते हो? शरीर को बचाना चाहते हो या तुम अपने को बचाना चाहते हो? झूठ मत बोला करो। अरे तुम अपने मैं को ही तो, मैं में ही तो मृत्यु देख रहे हो, तभी तो मान रहे हो, तभी तो कह रहे हो और तो उसी का ही बचाने का प्रयास कर रहे हो, है ना? जानते भी हो परंतु मृत्यु को मानते भी हो, कहते भी हो और देखते भी हो। क्या कोई मर गया तो क्या आप कहते हो कुछ उसका तो शरीर मर गया, वो थोड़ा मेरा है? क्या बताए, इतना बढ़िया आदमी था मर गया जी, अब ये किसको लेकर कहते हो? शरीर कभी अच्छा होता है और शरीर का भी बुरा होता है, उसके मैं को ही लेकर तो कह रहे हो। है नहीं परंतु आप मान रहे हैं, समझे ना? इसलिए मान रहे हैं कि सत्य का बोध नहीं है, इसलिए मान्यता आ गई है। है नहीं परंतु फिर भी मान रहे हैं। ऐसा ही अज्ञान है नहीं परंतु अज्ञान को माना जा रहा है। जब अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान निर्मित क्या जीव हो सकता है या जीव निर्मित देह हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु फिर भी आप मान रहे हो, देख रहे हो, कह रहे हो, कर रहे हो। है नहीं परंतु फिर भी हो रहा है, इसी का नाम तो माया है। माया क्या है? और कोई वस्तु है क्या? इसी का नाम माया है, समझ लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि यही तुम्हारे जगत के रूप में मानने का आधार ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, अज्ञान है। ये तुम जगत मान रहे हो या जगत देख रहे हो, इसका आधार तुम्हें अपना अज्ञान है। ज्ञान है परंतु सामान्य ज्ञान है, ब्रह्म के रूप में नहीं है, जीव के रूप में है, इसलिए देह को माना जा रहा है। ये इसी तत्व को जो अज्ञान रूप जगत है, उस अज्ञान रूप जगत को ब्रह्म रूप जगत बनाना है। इसको करने के लिए श्रुति ये पहले वाक्य के द्वारा बता रही है। इसलिए मैंने कल बताया था कि आप पहले क्या करते हो, देखो इस एक वाक्य के द्वारा कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है, ये कई वाक्य के अंदर है। पूर्वार्ध में, श्रुति के पूर्वार्ध में श्रुति कर्म भी बता रही है, उपासना भी बता रही है और ज्ञान भी बता रही है। इसमें कर्म क्या है? कर्म यह है कि जगत को ईश्वर बनाना। कैसा बनाया जाएगा, इसका क्या उपाय, जगत को ईश्वर बनाने का उपाय क्या, ईश्वर को जगत बनाने का उपाय तो हमने बता दिया। ईश्वर जगत बना तो किससे बना? माया। माया का मतलब क्या? ईश्वर के अज्ञान से। ईश्वर के अज्ञान का नाम ही माया है और जीव आत्मा के अज्ञान का नाम ही अविद्या है। अविद्या किसको कहते हैं? आत्मा के अज्ञान का नाम ही अविद्या, और ईश्वर के, ब्रह्म के अज्ञान का नाम ही माया। ये जो ईश्वर की माया है और ये जो जीव की अविद्या है, इस अविद्या के कारण ही तुम अपने को जीव मान रहे हो या ब्रह्म में ईश्वर मान रहे हो, और ईश्वर को लेकर के ईश्वर का जगत मान रहे हो, ऐसा ही जीव को लेकर के जीव का जगत मान रहे हो। तो तुम्हें करना क्या है? अपने जगत को ईश्वर ब्रह्म बनाना है और ईश्वर के जगत को भी ब्रह्म बनाना है, जीव को भी ब्रह्म बनाना है और ईश्वर को भी ब्रह्म बनाना है। तभी तो सर्वम खलविदम ब्रह्म होगा, तभी तो ये श्रुति सर्वम खलविदम ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा क्या करती है? संपूर्ण कण कण को, जीव निर्मित जगत को भी ब्रह्म बता रही है और ईश्वर निर्मित जगत को भी ब्रह्म बता रही है। यही बात ये श्रुति का पूर्वार्ध कह रहा है कि जगत्याम जगत, जीव के जगत को भी और ईश्वर के जगत को भी, जीव को भी और ईश्वर को भी क्या बनाना है? ईश्वर बनाना, ईश्वर अर्थात ब्रह्म बनाना है। और ये बनाने में जो प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक का त्याग करना है, निषेध करना है, समझे ना? तो पूर्वार्ध के द्वारा श्रुति करने के लिए भी आदेश दे रही है और मानने के लिए भी निर्देश दे रही है। मानना उपासना है और करना कर्म है, क्रिया कर्म है। तो इसलिए देखना मूर्ति को है, मानना ईश्वर को है और जानना ब्रह्म को है, समझ रहे ना? इसलिए पूर्वार्ध में ये बता रहे हैं कि तुम्हें कर्म का निषेध नहीं है, उपासना का निषेध नहीं है और ज्ञान का तो निषेध का प्रश्न ही नहीं होता है, समझ लो। परंतु तीनों में एकता होना चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए? तभी सत्य होगा। तीनों में एकता नहीं, कथनी, करनी और जाननी है। ये यदि अलग अलग है तो जो तुम जिसके लिए चाहते हो मुक्ति के लिए तुम मुक्त नहीं होंगे। क्या इसका फल ये नहीं होगा यदि ये चाहते हो। इसलिए तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति शास्त्रों ने दो प्रकार की मुक्ति बताई है और ये दोनों प्रकार जीवन मुक्ति के लिए जीव के जगत को ब्रह्म बनाना पड़ता है और विदेह मुक्ति के लिए ईश्वर के जगत को ब्रह्म बनाना पड़ता है, तब वह अमृत होता है। अमृत क्या? तब अमृत होता है। ईश्वर भी मृत है और जीव भी मृत है। क्या? जैसे स्वर्ग के देवता जो होते हैं वो अमर भी होते हैं और मृत भी होते हैं। पुण्य के दृष्टि से अमृत अमृत है, परंतु पाप से मुक्त नहीं है तो मृत्यु ही है, मरने वाले। इसलिए तो भयभीत होते हैं। तेतम स्वर्ग लोकम विशालम चीनी पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो भी मरते हैं तो मृत्यु का भय है कि नहीं है। इसलिए दोनों जगत से मुक्त होना है और दोनों जगत से मुक्त तब हो सकते हो कि इस दोनों जगत में तुम ब्रह्म को अनुभूत करते हो, ब्रह्म को जानते हो। जानना ब्रह्म को जानना चाहिए और अनुभव आत्मा का करना चाहिए, ये ध्यान रखो। जानना बाहर होता है और अनुभव अंदर होता है। इसलिए आत्मा ब्रह्म जो कहा गया है उस आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति करो, ईश्वर में ब्रह्म को जानो। क्या? ईश्वर में ब्रह्म को जानो और आत्मा में ब्रह्म की अनुभूति करो, क्योंकि मृत्यु से मुक्त किसको करना है? तुम्हें ईश्वर को करना है कि तुम्हें अपने को करना है? मुक्ति की जरूरत ईश्वर को है या तुम्हें? ईश्वर को नहीं, तुम्हें। इसलिए ब्रह्म की अनुभूति ईश्वर में नहीं, ईश्वर में तो जानना है, ईश्वर ब्रह्म है ये तुम्हें जानना है, परंतु आत्मा में अनुभव करना है। इसलिए श्रुति आदेश करती है, यही बात यहां पूर्वार्ध के द्वारा बताई है। अब इसमें जो प्रतिबंधक है, तीन प्रतिबंधक है। क्या? तीन त्यक्तेन भुंजी था, ईश्वर में और जीव में, जीव के जगत में और ईश्वर के जगत में, दोनों में भी ब्रह्म भाव करना है। क्या? ब्रह्म भाव करना है, ये श्रुति ने आदेश दिया है। इसके अलावा जो तुम दूसरा भाव कर रहे हो उसका श्रुति निषेध करती है। तुम ब्रह्म में जगत जगत ईश्वर का भाव कर रहे हो और ईश्वर में ईश्वर जगत का भाव कर रहे हो, अर्थात जीव जीव को मान रहे हो और जीव में देह को मान रहे हो। ये जिससे जिस कारण मान रहे हैं, क्या तुम ब्रह्म में ईश्वर जो मान रहे हो क्यों मान रहे हो? ईश्वर में जगत मान रहे हो क्यों मान रहे हो? ईश्वर का जगत क्या है? जीव। और जीव का जगत है देह। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों में भी तो जो तुम जिस कारण से देख रहे हो उस कारण को दूर करना है, और वो कारण है माया अविद्या, समझे ना। सब पहला प्रतिबंधक। अब वो कारण में जो मान रहे हो या देख रहे हो या कह रहे हो वो तो उसका क्या है, काम है, काम। सो अकाम है तो, समझ ना। दूसरा प्रतिबंधक है काम, और तीसरा प्रतिबंधक है कर्म। ये तीन प्रतिबंधक है, क्या, अविद्या, काम और कर्म। ये तीन प्रतिबंधकों का श्रुति तेन त्यक्तेन भुंजी था इस वाक्य के द्वारा विचार करती है। तेन त्यक्तेन, किससे त्याग करना है, उस ब्रह्म भाव से क्या करना है, ब्रह्म भाव से। तेन का मतलब ऊपर जो बताया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, वो जो ब्रह्म भाव है अर्थात जो व्यापक तत्व भाव है, उस व्यापक तत्व भाव से। ये तृतीया है तेन, समझे ना, अर्थात उस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से किसका त्याग करना है। जो इसका प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को निवृत्त करना है। ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है, अज्ञान, समझे ना। तो अज्ञान का त्याग है, और इस अज्ञान को अज्ञान न समझने देने वाला कौन है, काम। काम जो है ना, वो अज्ञान को भी अज्ञान रूप से तुम्हें नहीं समझने देता है, समझे ना। और उस काम को भी काम रूप से न समझने देने वाला जो प्रतिबंधक है वो क्या है, कर्म, समझे ना। कर्म तुम्हें काम से भी, काम को भी ज्ञान नहीं होने देता है, ये काम है ये नहीं तुम्हें मालूम पड़ता है, समझे ना। कर्म उस काम को भी आच्छादित करता है, और काम अज्ञान को भी आच्छादित करता है, और अज्ञान ईश्वर को भी आच्छादित करता है, ब्रह्म को भी आच्छादित कर देता है। इसलिए तेन त्यक्तेन, उसके त्याग से, समझे ना। भुंजिता, भुंजिता का अर्थ भोग भी होता है, और भुंजिता का अर्थ एक भगवतपाद शंकराचार्य जी ने पाले था कहा है, पालन करो, समझ। वो क्या चीज है उस पर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति।